एवं उनके चरण कमलों में हम सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं। ऐसे दया दयाल करुणामय श्री श्री राधा मदन मोहन जी, ललिता विशाखा, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर मैं नतमस्तक होकर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात श्री श्री गौरनिथाय भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस युग के युग अवतारी जो हैं, जो कि हम सब के कल्याण के लिए गोलोक के प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन हम सबको प्रदान कर रहे हैं, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए इस युग के युग आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिविदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस भक्ति रूपी गंगा का प्रवाह पुनः इस धरातल से जागृत किए हैं, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आज के सत्र के ओर हम अग्रसर होते हैं। ये पूतना वध का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में श्रीमद् भागवतम का हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, इसके पीछे ये प्रसंग का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है ये एतात् पूतनम् मोक्षम् कृष्णस्य अद्भुतम् अद्भुतम् श्रेणया। कहते हैं कि श्रेणया सुने से कैसे श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ मृत्यु, कहते हैं कैसे अगर हम बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे श्रद्धा के साथ करेंगे गोविंद लभते रथिम। बहुत सुंदर बात बताया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी पर एक दृष्टि से अपना ही कथा बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं तो एक ब्रह्मवादी था, मैं तो ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म में अपना आकर्षण प्राप्त किया था। मुझे कृष्ण के रूप में, कृष्ण की लीला में, कृष्ण के गुणों में कोई रुचि नहीं है। और हम सब जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी पर जैसे ही उनका आविर्भाव हुआ, वो अपने माँ के गर्भ से निकले तो निकले, वो दौड़ने लगे इस संसार से दूर जंगल की ओर दौड़ने लगे, वन की ओर भागने लगे। तब व्यासदेव जी उनके पिता उनके पीछे गए और कहे कि बेटा वापस आओ, बेटा वापस आओ, पर सुखदेव गोस्वामी पाद किसी प्रकार से वापस नहीं आए। तब व्यासदेव जी ने सोचा मैं अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव महाराज को, जो उन्हें एक उत्तम कोटि का भक्त बनाना चाहता हूँ, उसे भागवतम के भगवान के भक्ति के ऊंचे रस का आस्वादन कराना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण के दिव्य रूपों के प्रति, उनके लीलाओं के प्रति, उनके गुणों के प्रति, उनके नाम के प्रति उन्हें आकर्षित कराना चाहता हूँ। पर वो तो ब्रह्मवादी बनकर चल जा रहे हैं। तब ये व्यासदेव जी उनके जो पिता हैं वो दो सुंदर श्लोकों का उच्चारण करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने दो चुने हुए शिष्य को पकड़ते हैं। कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जंगलों में भटक रहा है, ब्रह्म में ध्यान लगा रहा है, ये दो श्लोक, और ये दो श्लोक का उच्चारण करते हैं जिन दो श्लोकों में भगवान का रूप माधुर्य का वर्णन आता है और भगवान का कृपा माधुर्य का वर्णन आता है। और ये दो श्लोक सुनकर ये सुखदेव गोस्वामी महाराज अपना ब्रह्म में जो आकर्षण था उसे छोड़कर कृष्ण के प्रति गोविंद लभते प्रति, तो गोविंद के प्रति आकर्षित हो गए। तो पहला श्लोक जो था वो इस प्रकार से है जो भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन करता है। वरहा कीडं नतवरहतो करन्यो कर्मिकारं, तो ये सुंदर श्लोक जो है भगवान श्री कृष्ण का रूप माधुर्य का वर्णन करता है, जिसमें वर्णन आता है कि भगवान बहुत सुंदर है और ये सुंदर मोर को धारण करते हैं और उनका बपू जो है बहुत ही सुंदर है और नृत्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं, नटवर बपू। इस प्रकार से भगवान के सुंदर रूप का जैसे आकर्षित हुआ, कहा कि कौन है ये सुंदर व्यक्ति, कौन है ये सुंदर व्यक्ति। और तो और उसके बाद का जो श्लोक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका वर्णन जिसने सुनकर पूरी तरह से सुखदेव गोस्वामी पर भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए, वो श्लोक इस प्रकार से अहो परकीयं स्थानं कालकूटं जिगांसय पयः यदपि असातपि लवे गतिं दास्त्री उचितं ततो अन्यं कामबाल दयालु शरणं व्रजे में, कामबाल दयालु शरणं व्रजे में, कामबाल दयालु शरणं व्रजे में। तो इस श्लोक में आता है वर्णन कि अहो बकी, बकी का अर्थ होता है बकासुर का बैल बकी, एक असुर है, वो अपने स्तन में कालकूट नाम के जहर डालकर आई थी। अहो बकीयम कालकूटम, स्तन कालकूटम, अपने अपने स्तनों में कालकूट नाम के जहर डालकर आई थी। जिघांसा बहुत ही खतरनाक, ईर्ष्या के साथ, जिघांसिया प्रेम के साथ नहीं, प्रेम के साथ जिघांसिया अपाया पूरे ईर्ष्या के साथ वो आई थी। असाध्वी पापनी, हाँ ये असाध्वी पापनी जो है पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए, पर उन्हें क्या प्राप्त हुआ, लभे गतिम दात्रे उचितम ततो, कहते हैं कि ऐसा होने पर भी उसे एक वैकुंठ धाम में, भगवान के धाम में एक माँ का, एक वात्सल्य रस का माँ का उन्हें स्थान मिला, दात्री। अन्य क्रीम, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि तो ऐसे कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए और उनके शरण हमें ग्रहण करना चाहिए, इसलिए कहते हैं अन्य किम वा दयालु, इससे दयालु और कौन हो सकते हैं, इनसे दयालु और कौन हो सकते हैं। ये श्लोक सुनकर तुरंत सुखदेव गोस्वामी पाद का जो आकर्षण है वो कृष्ण के प्रति हो गया। वो सोचे कौन वो सुंदर व्यक्ति है, इस संसार में हम बहुत सारे सुंदर लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े सुंदर लोगों को देखते हैं, पर है वो सुंदर, पर क्या वो दयालु है, नहीं दयालु है। तो कृष्ण के बारे में श्रवण के ये व्यक्ति तो ये तो बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है, पर साथ ही साथ दया दयालु है, जो उसे जहर देखकर ईर्ष्या के साथ मारने आया उसे वो एक ऊंचे कोटि का पद देते हैं, तो इससे दयालु कौन हो सकता है। ये सुनते सुनते कहा कि मुझे इनके बारे में और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए, ये है आसक्ति। तब वो व्यासदेव जी के पास बैठे और पूरा भागवत का रस आस्वादन किए, कृष्ण के बारे में पूरा श्रवण किए, और ये श्रवण करने के बाद इसी भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद रचने पचने लगे और पूरी तरह से विरक्त होकर संसार में भ्रमण करे और उनके हृदय में भक्ति का रस पूरी तरह से उमगने लगे, कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा, और वे आए और परीक्षित महाराज को यही भागवत कथा श्रवण जब कराए तो इस संसार के जितने भी महात्मा है आए और सुखदेव गोस्वामी पाद के इस कथा को श्रवण की। अर्थात ये कथा पूतना वध का बहुत 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 महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कथा के द्वारा सुखदेव गोस्वामी पाद कथा किए, इस कथा के द्वारा सुखदेव गोस्वामी पाद का आकर्षण कृष्ण में हुआ, और इस कथा के द्वारा आज हम सब भी श्रीमद् भागवतम का कथा रस आस्वादन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पूतना व्रत का प्रसंग। ये पूतना व्रत का प्रसंग जो है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध के छठे अध्याय में प्राप्त होता है। एक एक दृष्टि से श्री गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवतम के इस दशम स्कंद के कृष्ण के लीलाओं का विज्ञापन करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण बड़े दया दयालु है, तो हम सब भक्तों को चाहिए इधर उधर ना भटके, इधर उधर किसी और का सेवा नहीं करें और इधर उधर किसी और के लिए कार्य ना करें। क्यों नहीं करें, क्यों नहीं संबंध करें? एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत ही मोटा हो चुका था, बहुत मोटा हो चुका था, साइज से ज्यादा मोटा हो गया, एक साइज होता है उससे ज्यादा मोटा हो गया, यानी कि वो खाते खाते बहुत मोटा हो गया था। तो डॉक्टर के पास गया, खतरा था, और खाएगा तो खतरा फट सकता है, ऐसा हालत हो गया। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने कहा, भाई साहब बहुत खतरा है, आप अब खाओगे, अपने मनमानी तरीके से जियोगे तो आपका जीवन घातक होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए आज से अब से आपको केवल दो ही रोटी खाना होगा। तो ये मोटा व्यक्ति जो था, डॉक्टर साहब से कहा, हाथ जोड़ गया, डॉक्टर साहब बताइए ये दो रोटी खाने से पहले खाऊं या खाने के बाद खाऊं? अर्थात इस संसार में हम अपने मनमानी तरीके से जीना चाहते हैं, मनमानी तरीके से जीना चाहते हैं, पर यहाँ पे तात्पर्य यह है, डॉक्टर साहब बताना चाहते हैं, आप अपने मनमानी तरीके से खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे, आपका जीवन खतरे में रहेगा, घातक रहेगा, आपके लिए बहुत ही खतरा होगा, इसीलिए मैं जैसे कहता हूँ वैसे कीजिए, दो रोटी खाइए। पर यह क्या अपने तरीके से जीना चाहते हैं? अपने तरीके से जो जीते हैं वो बंधन में फंसते जाते हैं, संसार के बंधन में फंसते जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, साधु और गुरु शास्त्र यही कहते हैं, अपने तरीके से मत जिए, कृष्ण के बताए हुए तरीके से भगवद गीता में जैसे वर्णन करते हैं, साधु संत जैसे कहते हैं वैसे जिए, इससे अपना जीवन सार्थक होगा, मुक्त होगा, नहीं तो बहुत खतरनाक होगा। तो भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं इस लीला के द्वारा कि आप यहाँ वहाँ औरों का सेवा क्यों कर रहे हो? देखिए पूतना जो मेरा सेवा करने आई थी, वो भी ईर्ष्या मारने के लिए, मारने के इच्छा से, फिर भी मैं उनको एक उत्तम कोटि का पद देता हूँ। तो आप लोग बड़े प्रेम से, भले ईर्ष्या से नहीं, जैसे प्रेम से भी नहीं, वैसे तैसे भी आ जाए तो आपको पूतना से ज़्यादा पद प्राप्त होगा। क्यों इधर उधर भटक रहे हो, क्यों औरों का सेवा कर रहे हो, आओ मेरा सेवा करो। सेवा तो हर किसी को करना ही करना है, हाँ हर जीव का ये एक स्वरूप है कि वो सेवा करे। जैसे एक व्यक्ति कह रहा था, हॉलीडे का अर्थ क्या है, हॉलीडे का मतलब क्या है, छुट्टी का अर्थ क्या है, यानी कि अन्य दिनों में हम बॉस का सेवा करते हैं, अपने मालिक का सेवा करते हैं, और छुट्टी के दिन अपने बीवी का सेवा करते हैं। अतः आप सेवा तो करना ही करना है, चाहे बॉस का करो या बीवी का, सेवा करना ही करना है। तो ये सेवा अगर हम अन्यों को करेंगे तो ये बंधन का, दुख का कारण होगा, पर अगर हम कृष्ण का करेंगे ये मुक्ति का कारण होगा, ये 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 आनंद का एक कारण होगा। तो इस प्रकार से ये लीला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है, कृपा करके बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये एता पुत्न मोक्षाम, हाँ कहते हैं कि ये कथा जो है कृष्ण मोक्ष का बड़े, हाँ बहुत ही सुंदर कथा है ये कथा, कृष्णस्य अद्भुतम, कृष्ण के बाल लीलाओं का कथा जो अद्भुत है, उसे बड़े बड़े श्रद्धा के साथ आप श्रवण कीजिए। शून्यो यक श्रद्धया मतयो, इस संसार के लोगों को मर्त योग कहा गया, तो उन्हें क्या होगा, गोविंद लगने रही, आसक्ति गोविंद के प्रति हो जाएगा, ये गोविंद के प्रति आसक्ति, आसक्ति तो इस संसार में होना ही होना है, इस संसार के वस्तु के प्रति, इस संसार के लोग के प्रति, इस संसार के कार्य के प्रति होगा, ये दुख का कारण होगा। पर यही आसक्ति अगर कृष्ण के प्रति होगा, कृष्ण के भक्तों के प्रति होगा, कृष्ण की लीलाओं के प्रति होगा, ये मोक्ष का द्वार बनेगा। तो ये गोविंद लब्धे रतिम कब होगा, जब हम कृष्ण का इस पूतना व्रत का कथा बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। कृष्ण का दिव्य जन्म हम सब श्रवण किए, भगवान कृष्ण का जन्म दिव्य है, भगवान कृष्ण का जन्म कारागर में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म कारागर में हुआ, पर ऐसे जन्म का कथा श्रवण करेंगे हम इस संसार रूपी कारागर से मुक्त हो जाएंगे। और कृष्ण का जन्म दिव्य जन्म रात के अंधेरे में होता है, रात के अंधेरे में होता है, पर यही कृष्ण का दिव्य जन्म का लीला इत्यादि को श्रवण करेंगे हम इस संसार के घोर अंधकार से हम उजाले की ओर जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण कारागर में जन्म लेते हैं हम सबको कारागर से मुक्त करने के लिए, कृष्ण अंधेरे में जन्म लेते हैं हम सबको अंधेरे से उजाला में लेके जाने के। तो कृष्ण का जन्म होकर 3 दिन हो चुका है, अर्थात भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि है, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और उसके ठीक 2 दिन के बाद, कृष्ण केवल 3 दिन के थे तब कृष्ण ये लीला करते हैं। तो दसम स्कंद में इस दिव्य लीला का बहुत सुंदर वर्णन आता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद संक्षेप में इस कथा को श्रवण किए और उनका आकर्षण कृष्ण के प्रति हुआ, और ये खास करके वृंदावन में अनेक अनेक असुरों का वध का वर्णन आता है, पर सुखदेव गोस्वामी पाद उसे ज्यादा विस्तार रूप में नहीं कहते, पर जब पूतना का वध का वर्णन आता है तो बड़े विस्तार रूप में इसका वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर रूप में पूतना का, जो कि राक्षसी है, असाधवी है, पापनी है, उसका बड़े सुंदर रूप में वर्णन करते हैं, जैसे मानो कि वो मोहिनी रूप का भगवान कृष्ण का सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। वैसे और असुरों का जब वध होता है, और असुरों का कथा जब आता है वह संक्षेप में बहुत ज्यादा उसके बड़ा चढ़ा के नहीं बताते, पर ये कथा जो है बड़े लगभग 44 श्लोकों में वर्णन करते हैं, बड़े डिटेल में जाते हैं, क्योंकि यही कथा है जिसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी महाराज का आकर्षण, रति, आसक्ति कृष्ण के प्रति हुआ है। तो इस उनका गाढ़ संबंध है, हम सब भक्तों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। तो कहते हैं कि नंदहपति दसम स्कंद का शुरू, ये छठे अध्याय का प्रारंभ सुखदेव गोस्वामी पाद इस प्रकार से कहते हैं, श्री सुख वाच्य नंदपति वाच सुरेर ना मिर्षते विंचन तयाम हरिम जगम शरणम उत्पत गम शंकयति। कहते हैं कि नंदपति वाच सुरेर, ये नंद महाराज जो है अब वापस आ रहे थे। कहाँ से वापस आ रहे थे? वो मथुरा से वापस आ रहे थे। नंद महाराज और जितने भी ब्रज के वासी हैं ये सब किसान हैं, गोरक्षक हैं, तो ये कर देना उनका एक सेवा है, अधिकार बनता है कि वो राजा कंस को कर दे, तो ये वैदिक शिष्टाचार है। तो वो सोचे अगर अगर हम यहाँ पे रुके रहेंगे तो कंस के जो सिपाही हैं वो आएंगे कर लेने के लिए, अगर कंस के सिपाही इधर आएंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कृष्ण का जन्म हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जन्म लिए हैं, तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैं एक काम करूँगा, मैं वृंदावन छोड़कर मथुरा जाऊँगा और खुद स्वयं उनको कर दे के आऊँगा। तो वो कर दे के मथुरा में वापस आ रहे नंदपति वाच सुरेर, वो ध्यान कर रहे थे, वो गए तो गए मथुरा में कंस को कर इत्यादि दिए, पर वो वसुदेव से भी मिले। पर ध्यान देने वाली बात है, कथा में हम श्रवण किए होंगे कि जब जब वसुदेव को पता लगा कि नंद बाबा आए हैं यहाँ पे, तो बहुत खुश हो गए, पर वो जानते थे नंद महाराज उनके उन्हें मिलने के लिए उनके महल में आएंगे, पर ऐसा अगर होगा तो कंस जो है उनके गुप्तचरों के द्वारा जान लेगा कि नंद महाराज और वसुदेव का कुछ संबंध है, तो ये घातक है। इसलिए वसुदेव जो है अपना महल छोड़कर नंद महाराज से मिलने आते हैं, और नंद महाराज से मिलने वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि कृष्ण कैसे हैं। 3 दिन हो चुका है वो अपने पुत्र से विरह होकर, और उनके बारे में जानकारी लेना चाहते थे। तो जानना चाहते थे कृष्ण बहुत सुखी है कि नहीं, पर वो डायरेक्टली नहीं जानना चाहते थे, तो टेढ़ा मेढ़ा करके जानने का प्रयास करते हैं। तो कैसे वो जानने का प्रयास किए, तो पूछते हैं क्या वृंदावन के दास बहुत हरा भरा और अच्छा है? तो नंद महाराज ने कहा हाँ। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ यह हो गया, अगर घास अच्छा है तो वृंदावन के गाय उसे खाएंगे, वो हष्ट पुष्ट और अच्छे होंगे। अगर गाय हष्ट पुष्ट और अच्छा होगा तो गाय का जो दूध है वो दूध अच्छा होगा, और गाय का दूध अगर अच्छा होगा तो ये गाय का दूध किसे मिलेगा? कृष्ण को। तो इस प्रकार से कृष्ण के बारे में जानकारी लेने लगे, डायरेक्टली नहीं पूछे, क्योंकि डायरेक्टली पूछे कि नंद महाराज को भी लगेगा इसे कृष्ण से क्या संबंध है इनका, या गुप्त जब जो सुन रहे हैं वो भी जान लेंगे। तो ये सब कहते कहते वसुदेव ने एक सुंदर बात कहा कि कृष्ण का जरूर वृंदावन में कुछ खतरा या बहुत बड़ा खतरनाक घटना घटेगा। ये जैसे ही सुना तो ये नंद महाराज जो थे वो बहुत चिंतित थे, क्योंकि वो जानते थे ये वसुदेव जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़े संत हैं, भले वो राजा हैं बहुत बड़े संत हैं। और वसुदेव का एक नाम है अनंत दुंदुभी, वसुदेव का एक नाम है अनंत दुंदुभी, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो सारे देवी देवता आकाश से बहुत बहुत सारे ढोलक दुंदुभी इत्यादि बजाए, और उन्होंने घोषणा किया ये बालक जो भी कहेगा वो सत्य निकलेगा, ये बालक जो भी कहेगा वो कभी झूठ नहीं होगा। इसीलिए वो सोचने लगे, वसुदेव ने अगर कहा कि ब्रज में कुछ खतरा है तो जरूर ये सच है। तो वो सोचने लगे क्या खतरा होगा, वो सोचे कि जरूर खतरा होगा, और ये भक्तों का स्वभाव है कि खतरा अगर होगा तो वो भगवान के शरण जाते हैं। तो कहते हैं कि हरिम जगम शरणम, तुरंत वो अपने भगवान अपने नारायण का स्मरण करने लगे, अपने घर में जो विष्णु का विग्रह है उसका स्मरण करने लगे कि वृंदावन में ब्रज में कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो क्या खतरा है, तो क्या खतरा है इसका वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज। कहते हैं कि कंसेन परहित गोरा, एक कंस जो है एक गोर कार्य में लगा हुआ है, कंसेन परहित गोरा पूतना बालक घातनी शिशु चर का निगनती पूरा ब्रज आदिशु। तो कंस जो है वो बहुत ही चिंतित था, जैसे ही उनको पता लगा कि ये जो देवकी है जिसे आप बहन मान रही हो उनका आठवां पुत्र आपका मृत्यु का कारण बनेगा, जैसे ये आकाशवाणी उन्होंने श्रवण किए तब से वो चिंतित रहे, उसका रात का नींद उड़ गया उसका दिन का चैन उड़ गया। वो खाते तो थाली में मृत्यु देखा करता, वो शीशा में देखते तो मृत्यु देखा करता। तो इस प्रकार से कंस पूरी तरह से भयभीत होकर कृष्ण भावना भावित हो गया, खाते वक्त कृष्ण सोते वक्त कृष्ण जागते वक्त कृष्ण, भयभीत होकर पूरी तरह से कंस कृष्ण भावना भावित हो गया था। और कंस चिंतित था, तो एक दिन दरबार में चिंतित था तो सारे मंत्रियों के सामने बैठा हुआ था, सारे मंत्रियों ने कहा कि सामने बैठा करना क्या, चिंतित क्यों हो? तो सारे मंत्रियों ने सोचा कि चलो हम चलते हैं और जहाँ तहाँ हम जाएंगे और जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों का वध करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने ये कर उनके जितने भी सैनिक थे उनको उन्होंने ये आज्ञा दे दिया, जाओ ब्रज में वृंदावन में और वहां पे जितने भी बच्चे हैं उन्हें उठाओ और वहीं पे पीट के मार दो। तब उतने में पूतना आ गई, वो कहा कि कंस से कहा कि महाराज अगर आप सिपाहियों को भेजोगे तो ये सिपाही को देखकर ब्रज के जितने भी लोग हैं वो चतुर हो जाएंगे, वो तुरंत अपने बच्चों को छुपा देंगे, आप बच्चों को ढूंढ नहीं पाएंगे, और ये आठवां लड़का जहाँ तहाँ भी रहेगा छुपके से बड़ा हो जाएगा और आपको मार देगा। उपाय ये है कि मैं केचरी हूँ, पूतना कहते हैं कि मैं रूप बदल सकती हूँ और मुझे बच्चों को खाने में बहुत आनंद आता है, तो वो बच्चों को खाने के लिए, वो कहा कि मैं जाऊंगी रूप बदल कर, वो लोग शक नहीं करेंगे, इस प्रकार से मैं अगर जाऊंगी तो मैं उस बच्चे को उठाकर मार डालूंगी। ये जैसे उन्होंने श्रवण किया, कंस ने कहा ये ठीक है आप जाओ, तो उनको परमिशन मिल गया। तो अब उतना जो है वो चलने लगी ना यात्रा। तो जैसे पूतना चलने लगी, तो यहाँ पे ये कथा जो श्रवण कर रहे हैं, कौन श्रवण कर रहा है ये कथा? परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं। ना यात्रा श्रवण श्रवण आदिनी राक्षसो गृहिणी स्व कर्मसु कुर्वन्ती सातुतम प्रतुर यतु दम्यश्च तत्र ही। तो परीक्षित महाराज से भगवान सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि आप डरिए नहीं हे प्रिय राजन, जहां जहां पे भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण होता है, जहां जहां पे कृष्ण का नाम का श्रवण कीर्तन होता है, वहां पे कोई खतरा नहीं होगा। इसीलिए आप चिंतित मत रहिए। ये क्यों कर रहे हैं? ये तीसरा श्लोक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही उन्होंने सुना कि पूतना जो है सीधा वृंदावन की ओर चलने लगी, तो परीक्षित महाराज बहुत भयभीत हो गए। परीक्षित महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं, वो श्रोता है पर वो हमारे जैसे श्रोता नहीं, सुनते सुनते हमें विचार आ रहा है कब ये कथा बंद होगा, कब हमें वो प्रसाद मिलेगा। हाँ कथा तो सुनाने लगे, श्लोक के ऊपर श्लोक बोल रहे, लगता है अब 12 ही बजा देंगे। नहीं, जैसे ही वो कथा श्रवण कर रहे थे, वो कथा में प्रविष्ट हो गए, उनका उनका पूरा मति कथा में चल गया। तीन प्रकार के लोग कथा श्रवण करते हैं, तीन प्रकार के लोग कथा बोलते हैं। तो कौन है वो तीन प्रकार के लोग जो कथा श्रवण करते हैं? एक है श्रोता, दूसरा है सरोता, तीसरा है श्रोता। श्रोता वो है जो भी सुनता है वो कान से वो यहाँ से अंदर लेता है, एक है सरोता और तीसरा है। तो तीन प्रकार के लोग कथा श्रवण करते हैं और तीन प्रकार के लोग कथा करते हैं या बोलते हैं। एक है प्रवक्ता, एक है वक्ता और एक है वक्ता। तो अगर जो कथा कह रहा है वो बहुत प्रवीण है कथा कहने में, तो वो प्रवक्ता है, तो सुनने वाले बड़े ध्यान से सुनते हैं, वो श्रोता बन जाते हैं। अगर सुनने वाला कथा कहने वाला इतना प्रवीण नहीं है तो वक्ता बन जाता है, वो कहता है, गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, सही बात को बताते हैं, वो वक्ता है। तो लोग सरोता बन जाते हैं, यानी कि वो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। अगर वक्ता वक्ता है, इधर उधर कुछ भी बोलता है, तो सुनने वाले सोता है। तो इस प्रकार से श्रोता सरोता और सोता। एक बार एक व्यक्ति ने तीन मूर्ति बनाए, वो इतना मूर्ति सुंदर बनाया, इतना सुंदर मूर्ति बनाया, सब तीनों मूर्ति एक जैसे लगने लगे, तो इसका भाव लगा दिया। एक का उन्होंने 1 करोड़ रख दिया, दूसरे का 1,000 और तीसरे का 100 रुपये। तो लोग परेशान हो गए, तीनों एक जैसा लग रहा है, हाइट साइज रंग वेट सब एक जैसा, तो तीनों में अंतर क्या है? तो लोग परेशान होंगे। तो वो शिल्पी जैसा से पूछा कि तीनों एक जैसा है पर उसका मूल क्यों अलग है? सबने प्रश्न किए तो कहा कि इसका कारण ये है कि उन्होंने एक दास का एक बहुत बड़ा तिनका निकाला, एक के कान में डाले, वो तिनका जैसे कान में डाले तो वो तिनका वापस बाहर आ गया, वो तिनका घास जो है वापस बाहर आ गया। फिर दूसरा घास निकाला, घास के तिनका निकाला लंबा सा, और दूसरे मूर्ति के कान में डाले तो वो इस कान से गया और इस कान में आ गया। फिर तीसरा बड़ा तिनका निकाला, वो इस कान में डाले तो गास का तिनका जो बाहर नहीं निकला, अंदर गया, वो ना तो वापस आया ना तो इस कान से आया, वो सीधे अंदर गया, जाते जाते वो हृदय के भीतर वो गास का तिनका और डाल रहे तो अंदर गया। तो इसलिए वो बताया, पहला पहला मूर्ति जो है वो सोता है, वो ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो कथा में आता है तो सोता रहता है। दूसरा मूर्ति जो है वो सोता है, ये सुन लेता है, ठीक है बैठेंगे सुनते हैं, टाइम पास करेंगे, यहाँ से करता है। तीसरा जो है वास्तविक श्रोता है, वो जो भी सुनता है उसके हृदय में लेता है और प्रविष्ट हो जाता है कथा में। तो इस प्रकार से प्रविष्ट हो गए थे वो, जैसे सुने कि पूतना अब वृंदावन जाने वाली है तो वो भयभीत होने लगे, कृष्ण को मारने वाले हैं तो भयभीत हो गए। तो यहाँ पे सुखदेव महाराज कहते हैं कि मेरे प्रिय राजन, आप ये बात ध्यान में रखिए, ना यत्र श्रवण आदिनी, जहाँ पे कृष्ण का नाम कीर्तन का श्रवण होता है, श्रवण कीर्तन होता है, वहां पे किसी प्रकार का कतरा नहीं है। गोलोक में भगवान कृष्ण साक्षात उपस्थित है, वहां पर कोई कतरा नहीं हो सकता। तो परीक्षित महाराज थोड़ा निश्चित होकर सुनते हैं, फिर कहते हैं कि सा केचरी एकदा उपाय था। तो कहा कि स वो पूतना केचरी, केचरी का अर्थ होता है केचरी, चर अचर, हम सुनते हैं चर अचर, चर यानी कि चलने फिरने वाला, अचर यानी कि स्तंभ वृक्ष आदि, केचरी जलचर, जल में चलने वाला, जल में चलने वाला जलचर। तो कहते हैं कि केचरी, केचरी का अर्थ होता है के यानी कि आकाश, भूमि अपोलो अनलो वायु खम, खम बोलते हैं, जैसे भागवतम में भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, कहते हैं कि रसो हम अवसर कौनते यह प्रभासी सशिशूर यह प्रणमस्कार को वेदेश शब्द के का अर्थ होता है आकाश। तो आकाश में चलने वाले इसको कहते हैं केचरी। कुछ ऐसे ऐसे राक्षस हैं जो आकाश में उड़ सकते हैं, इसको बिच कहते हैं, इंग्लिश में बिच कहते हैं। वो लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, वृक्ष से एक पेड़ का एक लकड़ी तोड़ लेते हैं और उसे उसमें बैठकर वह हवा में उड़ सकते हैं, उनके पास वो सिद्धि है। और एक सब के अंदर एक गुण है कि वो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के खाते हैं, क्योंकि बच्चे के शरीर जो है बहुत कोमल रहता है और कोमल और बहुत स्वादिष्ट रहता है, यह राक्षसी उनके लिए वो बहुत स्वादिष्ट रहता है। मगर बड़े लोगों का जो मांस है वो थोड़ा कड़क रहता है, बहुत टेस्ट नहीं है उसमें, बच्चों का यह है राक्षसी। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग केचर बन गए, वो लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे का जन्म होते हैं बच्चों को मार डालते हैं। अरे पूतना से भी, पूतना तो ठीक है जो जन्म लिए बच्चे उनको मारते हैं, आजकल ऐसे ऐसे असुर आ गए जो बच्चों को जन्म लेने नहीं देते, माँ के गर्भ में ही मारते हैं, चाकू और सुई इत्यादि लेकर ऑपरेशन थिएटर में इंजेक्शन देके मार डालते हैं। कहते हैं अपने आप को डॉक्टर, पर है पूतना से भी भयंकर, पूतना से भयंकर आज लोग हो चुके हैं। आज मानो या ना मानो लोग सुनकर आप हैरान होंगे, या आपको जानकार होगा तो आप ना आप जान लो, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे नौजवान तरुण एवं तरुणी वे आपस में गलत संबंध रखते हैं, और ये तरुणी क्या करते हैं, वे 9 महीने के जब हो जाते हैं, 8वें महीने के हो जाते हैं या 7वें महीने के हो जाते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसके गर्भ को फाड़ देते हैं और गर्भ से उस शिशु को निकाल देते हैं, और ये शिशु को निकाल के मरा हुआ शिशु जब बाहर आता है उसे बड़े बड़े 5-स्टार रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं और उस शिशु का पिकल्स यानी कि अचार बनाते हैं या उसका कटलेट बना के खिलाते हैं। तो ये पूतना से भी भयंकर है। हांगकांग इत्यादि में जाओगे वहां पे आपको छोटे छोटे बॉटलों में शिशु मिलेंगे, ये वो बच्चे हैं जो 7 महीने के, और इनमें खाने वाले कौन है, और पूतना, पूतना नहीं उससे भी भयंकर। ये द्वापर युग की बात है, अब ये कलयुग में ऐसा हो रहा है, दिखते हैं सुंदर पर है उतना से भयंकर। तो यहाँ एक कदा ऐसा केचरी निकली थी, वो हवा में उड़ने वाली, वो उड़ते 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 बहुत दूर तक आ गई, मथुरा से उड़ते उड़ते आई। पर जब जैसे वो वृंदावन तक आ गई तो वो गोकुल तक आ गई तो अपना फ्लाइट नीचे कर गई, वो लकड़ी से नीचे कर गई। वो है केचरी, वो है राक्षसी, पर क्या कर दी, यहाँ पे कहते कि योषित हुआ, वो अपना रूप तो बदल दिया। उसके पास दो सिद्धि था, पहला सिद्धि नंबर वन कि हवा में उड़ रही थी केचर, दूसरा सिद्धि वो है बहुत असुरिनी, बहुत भयंकर दिखने में, बहुत मोटी काली, बड़े बड़े दांत वाली, दो बड़े सिंह, पर ये सब अंदर कर दिया और इतना सुंदर हो गई, इतना सुंदर हो गई कि देखने वाले देखते रह गए, रह गए अपने इच्छा से रुक गए। वो वृंदावन में आने से पहले वो क्या किए, अपना फ्लाइट डाउन कर दिया, अपना रूप बदल दिया। अब कोई देख रहा था तो लग रहा था साक्षात लक्ष्मी देवी वहाँ पे आ रहे, ऐसा लगने लगा। इस पूतना का बहुत सुंदर रूप में विस्तार में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज वर्णन कर रहे हैं। ये जानना चाहिए इतना विस्तार में वर्णन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही कथा संक्षेप में सुने थे और इस कथा के द्वारा उनका मन कृष्ण के प्रति गोविंद लभते रतिम, उनका प्रति गोविंद के प्रति हुआ। तो कहते हैं कि स्वाम केश बंदर, उनका केश के बारे में वर्णन करते हैं, उनके बालों के बारे में वर्णन कहते हैं कि उनके बालों में वो सुंदर सुंदर मल्लिका फूल इत्यादि डाले थे। और बृहन्न नितंब स्तन करिचया मध्ययम, उनके शरीर के मध्य में उनका स्तंभ का वर्णन करते हैं कि बृहन बहुत ही बड़ा स्तंभ था और ऐसे चलने लगे, और उनका कमर जो था बहुत ही पतला था। और इस प्रकार से सुहासनम कल्पित कर्ण भूषणम, वो बहुत सुंदर रूप से चल रही थी। किलो त्वी सोलोत कुंतला मंडित मंडिता नम, इस प्रकार से बहुत सुंदर लग रही थी। और वो चलते चलते मधुर मधुर मुस्कान करते हुए वृंदावन में वो चलते आ रही थी, मनो और ऐसा ऐसा करते हुए सबके मन को हर रही थी। मणि तन ब्रज कौशतम, ब्रज के सारे लोगों का मन को हर रही थी, जो भी देख रहे थे सब लोग देख रहे थे सुंदर स्त्री कौन है, सुंदर स्त्री कौन है, सारे स्त्री सारे पुरुष जितने गोप गोपियां हैं देख रहे थे ये कौन है, उन्हें ये नहीं लगा। औरतें तो नहीं, इनका बहुत अच्छा है पर अंदर मसाला खराब है। कभी कभी गिफ्ट पैकेट आता है, बाहर से पूरा सुंदर रहता है, गिफ्ट रख रहता है पर अंदर पूरा बम इत्यादि रहता है, तो ये ऐसे ही खतरनाक। सब लोग बोले इतना सुंदर गिफ्ट पैकेज किसके लिए जा रहा है। तो कहते हैं कि अपने हाथ में वो एक अंबुज मम अंबुजा, एक सुंदर अंबुज का होता है, एक कमल का फूल लेकर चल रही थी। वह चलते चलते कोई जल कहीं पे था तो वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा कमल लिया और ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते चल रही थी। ये दृश्य और भी सुंदर लगने लगी। गोपिया श्रीयम दृष्टुम इवगतम पतिम, इस प्रकार से सबको लग रहा था ये तो साक्षात लक्ष्मी है, और वो छोटा बालक कृष्ण जो कृष्ण इतने सुंदर लग रहे थे भले छोटे से थे, सबको लगा कि ये साक्षात विष्णु है। तो सब लोग कहने लगे मानो कि लक्ष्मी देवी वैकुंठ से आई है अपने पति नारायण विष्णु से मिलने। कोई रोका नहीं, कोई ठोका नहीं, भले भी चलने दो चलने दो। सब कभी कभी ऐसा सुंदर सुंदर रूप डालकर आते हैं तो सबको लगता है कि ये बहुत ही सही व्यक्ति है। इसीलिए हम भक्तों को चाहिए कि हम सुंदर रूप से पेश आए, जैसे खास करके प्रचारक को जब प्रचार करने जाए तो सुंदर लगना चाहिए, कोई सिक्योरिटी इत्यादि रोके नहीं। अगर हम दिखने में सुंदर कपड़े इत्यादि नहीं फेंके डालेंगे तो चपरासी भी मांग कर वो बोले भाग यहाँ से, पर अगर अच्छे सुंदर ड्रेस पहनकर जाएंगे कोई रोक टोक नहीं, सीधा हम जहाँ पे जाना है वहीं पर। तो चलते चलते गया बाल गृहस्थ तत्र विरजन वती शिशु, वो सीधा ये बाल ग्रह यानी कि बच्चों को खाने वाली, सब बच्चों को खाने वाली, वो सीधा सोचने लगी
यदृच्छया नंद ग्रह सद अंतकम, ये बाल ग्रह तत्र विचंति शिशु, ये बच्चों को खाने वाली, ऐसे जो बच्चों को शिशुओं को खाने वाली चल रही थी, यद इच्छया नंद ग्रह, वो सीधा नंद महाराज के घर आई, वो और कहीं नहीं गई। यद इच्छया का अर्थ यहाँ पे बहुत सारे आचार्यगण देते, यद इच्छया का अर्थ यह है कि कृष्ण की इच्छा से वो सीधे नंद महाराज के घर आए। सातवें नंबर श्लोक में आता है यद इच्छया, यद इच्छया यानी कि कृष्ण की इच्छा से। कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, वो जानते हैं कि किस इच्छा से ये पूतना यहाँ पे आ रही है, वो सब बच्चों को मारने वाली है। अगर वो गलती से किसी और के घर पे जाएंगे तो उन बच्चों को मार डालेंगे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कृष्ण ब्रज के और लोगों को दुखी करें। वो चाहते हैं कि सीधा वो मेरे पास आए और मैं उसे देख लूँगा। तो सीधा भगवान की इच्छा था, बाल ग्रह तत्र विचरति शिशु, वो सीधा किसके घर आए, नंद महाराज के घर पे आए बालम। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है कि घर पे वो आए, और आने के बाद ये जो है पूतना जो क्या किए हैं, ये पूतना जो है विभूतया तम बालका मालिक ग्रहणम चल अचल आत्मा स निमित्ते क्षणम। अब जैसे पूतना नंद महाराज के घर में आए, विबुद्धया जान लिया, भगवान कृष्ण जान गए, भगवान कृष्ण को विबुद्धया करके भगवान कृष्ण जाने ताम, ये पूतना क्यों आई है, वो क्यों आई है मालिका ग्रहण, वो क्यों आई है बालक का मालिका, वो बालकों को मारने में जो निपुण है, वो पूतना क्यों आया है, क्यों वो हम सबको मारने आई है। भगवान कृष्ण का जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। वास्तव में इस कथा के द्वारा भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। पूतना को भी जानते हैं, पूतना किस इच्छा से आए वो भी जानते हैं, हम सब यहाँ बैठे हैं हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी भगवान जानते हैं। भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये पूतना अब मेरे मारने आई है, फिर भी देखो मैं इसको क्या गति देता हूँ, क्या गति देता हूँ। विभूतया तान बालक का मालिका ग्रहण, वो जैसे घर पर आए तो भगवान कृष्ण ने आंख अपना बंद कर दिया, छोटा सा बालक कृष्ण क्या कर दिया, आंख बंद कर दिया, बालक कृष्ण ने आंख बंद कर दी। तो कृष्ण ने आंख बंद क्यों किया, इसके अनेक अनेक कारण हैं। आचार्यगण अनेक अनेक कारण देते हैं, अनेक अनेक आचार्यगण, हरिशौरी जी जो हैं एक महान आचार्य बनते हैं जो टीका लिखते हैं दशम स्कंध, वो कुछ टीका में अनेक कारण बताते हैं। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक कारण बताते हैं। फिर ये जो सुबोधनी करके एक हरिभक्ति सुबोधनी करके एक टीका है जो कि बल्लाचार्य जी लिखते हैं, वो भी अनेक अनेक कारण होते हैं। लगभग 20-25 कारण है क्यों भगवान कृष्ण बालक ने आंख बंद किया। मुख्य कारण यह है, अनेक अनेक कारण यह है भगवान कृष्ण इसलिए आंख बंद किए, क्योंकि वो बताना चाहते थे, ये कहना चाहते थे कि मैं तो इस धरातल पे आया, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्राह्यमपि भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। तो भगवान कृष्ण इस धरातल पर आते हैं असुरों का वध करने के लिए, परित्राय दुष्कृतियों का वध करने आया हूं मैं, पर यहाँ पे दुष्कृत नहीं, दुष्कृति नहीं आ गई। ऐसे वैदिक संस्कृति के अनुसार यह है कि स्त्रियां बच्चे वृद्ध और गाय का रक्षा होना चाहिए, हम स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, पर यहाँ पे भगवान कृष्ण का जो लीला है, वध करने का जो लीला है, उसका शुरुआत एक असुर या राक्षस के द्वारा नहीं हो रहा, असुर का वध या एक राक्षस का वध के द्वारा नहीं हो रहा है, एक असुरनी या राक्षसनी के वध से हो रहा है। तो कृष्ण कहते हैं अरे अब मुझे क्या करना होगा, तो अपना आंख बंद कर लेते, कृष्ण आंख बंद कर लिया। तो कृष्ण आंख बंद क्यों किए,
कि तो इसका और एक कारण यह है कि पूतना जो है वो अविद्या है, और अविद्या कृष्ण के सामने अविद्या का अस्तित्व नहीं है। जैसे चैतन्य चैतन्य पर वर्ण आता है, कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण है वहां माया नहीं अधिकार। सारे नौ मिल गए, अच्छा मैं सुबह सारे 8:20 हो रहे इसमें। तो कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण है वहां माया नहीं अधिकार, जहाँ कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं है, अविद्या का अधिकार नहीं है। तो कृष्ण ने सोचा अगर मैं आंख खोलकर देखूंगा तो पूतना का अस्तित्व नहीं रहेगा। ओ बेचारी बहुत मेहनत करके बहुत कष्ट करके फ्लाइट में बैठकर आई है और वृंदावन में आके उतरी है, फिर रूप इत्यादि बदल कर मथुरा से चल चल कर आई है, उसका परिश्रम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं आंख खोलूंगा तो बस मौकर उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, तो आंख बंद कर दिया। तीसरा, वो जानते थे, पूतना जानते थे कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अगर आंख खोल कर रहेंगे तो वो भयभीत हो जाएगी। तो बोला कि ठीक है, उसे लगे कि मैं नादान हूँ तो वो बड़े आसानी से मुझे उठाएगी और अपने गोद में लेगी और स्तनपान करेगी। तो इस प्रकार से अनेक अनेक कारण है। मुख्य कारण यह है कि कृष्ण पूतना को देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो और एक बहुत अच्छा सुंदर कारण यह है, पूतना कृष्ण तो जान गया कि ये तो है पूतना, ये राक्षसिनी है असुरिनी है, उसका भाव तो मैं स्वीकार करता हूँ, वो माँ का भाव लेकर आई है, स्तनपान कराने का भाव लेकर आई है, यानी कि एक माँ का विचार लेकर आई, उस भाव को मैं स्वीकार करूंगा, पर वो मुझे मारेगी इस भाव को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए वो आंख बंद करते। मैं उनका जो अच्छा भाव है, उनका जो अच्छा भाव है उसे मैं स्वीकार करूंगा, पर उनका जो बुरा भाव है उसे मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए वो आंख बंद कर लेते। इसे अनेक अनेक लगभग 25 से भी ज़्यादा कारण है, पर समय का अभाव है, मैं चाहे तो ये सब सुनाता था, तैयार करके तो आया था, पर समय का अभाव है, कथा को आगे चलाएंगे हम लोग। तो आंख बंद कर लिया कृष्ण ने आंख जब बंद कर लिया तो पूतना ने बालक कृष्ण को अपने स्तन के निकट, पहले तो वो बैठ गए दोनों पांव, हाँ, पर ये जो पूतना है इतना सुंदर लग रही थी, दोनों माता यशोदा और रोहिणी इन्होंने भी शक नहीं किया कि ये हमारे बेटे को मारने वाली है, वो सोचा ये तो साक्षात लक्ष्मी है, और उन्होंने कहा कि जाओ जाओ आप जाइए आप जाइए, कहा कि आपका हाथ लगेगा तो वो उनका भाग्य बेटे का भाग्य वो मंगलमय हो जाएगा शुभ हो जाएगा करके वो भी परमिशन दिए, नहीं तो ये माँ यशोदा किसी को आने नहीं देती है, किसी को भी अपने सामने नहीं आने देती है। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ माँ यशोदा जो है कृष्ण को अपने छाती से लगाई थी, किसी को भी नहीं देते थे। नंद महाराज कह रहे थे मुझे दो मेरा भी बेटा है, तो बोला ये दो, जैसे नंद महाराज ने तुरंत वापस ले जाए, बोला ये मेरा बेटा है, तो इतना रक्षा करती थी। पर इन्हें देखकर उन्हें शक नहीं हुआ, बोला कि ठीक है आप जाइए। तब जैसे ही गए तो पूतना ने क्या किया, उस बालक को उठाया और वो बालक जो था आंख बंद कर अपना मुंह को, कृष्ण ने अपना मुंह को ऐसा टेढ़ा किया, पर बच्चा है हाँ टेढ़ा किया, बोला नहीं चाहिए नहीं चाहिए, पर पूतना ने क्या किया, जबरदस्त अपना स्तन जो है उस बालक के मुंह में डाल दिया। फिर कृष्ण ने कहा आप इतना प्रयास कर रही हो तो ठीक है मैं स्तनपान कर ही लेता हूँ, और जैसे ही उन्होंने स्तन में अपना मुंह डाल ही दिया तो वो जहर जो था कालकूट, भयंकर रूप जहर था वो कालकूट, ऐसा जहर है कि वो जहर अगर कोई देख भी लेता है से इसका सूंघ भी लेता है तो वो मर जाएगा, और वो खाए तो खतरनाक जहर जो है हड्डी पसली को भस्म करके मार दे, ऐसा जहर है कालकूट। तो वो जहर जैसे पीने लगी तो वो ये पूतना सोचने लगी अब ठीक है ये बच्चा अब मर जाएगा, पर वो देखने लगा जो बच्चा आंख बंद कर पी रहा है तो वो आश्चर्यचकित हो गए, उनकी आंखें बड़े हो गए और वो भयभीत होने लगे, वो बच्चा कालकूट जहर पिया तो पिया हाँ कालपुट जहर पिया तो पिया, उसके साथ साथ उनके स्तन के दूध तो पिया तो पिया, और उनके स्तन के स्थान दूध और जहर के साथ साथ उनका प्राण वायु पिया, तो वो उनका होश जो है ठिकाने पाया, कहा कि ये बच्चा अब मरने वाला नहीं है, वो मुझे मारने वाली है, मुझे मारने वाला है ये बच्चा। जैसे यही हाल होता है अगर कोई कृष्ण को मारने का प्रयास करता है वो खुद मर जाता है, जैसे या कृष्ण या कृष्ण के भक्त को मारने का प्रयास करता है वो खुद मर जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप किसे मारने गया था, प्रहलाद को मारने गया, वो खुद मर गया। जैसे कृष्ण को मारने का जो भी प्रयास किया वो मर गए। जैसे चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए कुछ लोग गए थे, जब चैतन्य महाप्रभु केरला में गए थे तो वो कुछ भटारी नाम का कुछ सन्यासी थे, एक ये सन्यासी लोग चैतन्य महाप्रभु को मारने गए थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का एक सेवक था, वो सेवक उनके बीच में फंस गया था। ये भटहरियों ने कहा कि आप हमारे साथ रहोगे तो सुंदर स्त्री, आप सन्यासी भी रहोगे और सुंदर स्त्री के साथ मौज मस्ती भी करोगे, तो वो फंस गया उसमें। पर चैतन्य महाप्रभु कहा कि ये तो गलत है, सन्यास धर्म के विरुद्ध है। वो अपने जो सेवक है उसे वापस लेने गया, तो जैसे ही वापस लेने गए तो जितने भी 40-50-100 हज़ार भटहरी सन्यासी लोग थे, चैतन्य महाप्रभु को मारने आए, अपने हाथ में तलवार हथियार सब लेकर आए। जैसे वो हथियार लेकर मारने गए, चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक को पकड़ के घोर लगाए, तो जैसे वो मारने गए जोर जोर से भागे तो उनके हाथ के तलवार जो है हाथ से छूट गए, और वही तलवार जो हवा में घूमने लगा और उन्हीं के गर्दन काट, जो सब चैतन्य महाप्रभु को मारने गए वो मारे गए। अर्थात भगवान को जो मारने जाते हैं वो खुद मर जाते हैं, भगवान को मारना नहीं चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही पूछना सोची अरे अब मेरे को मर जाऊंगी, तो वो बोला छोड़ दो सामुंचा बोले कि सामुंचा मुंचलम इति, ऐसे बोले छोड़ दो मुझे ऐसे कहते कहते वो दौड़ने लगी। वो पूतना जो है उस बच्चे को फेंकने का प्रयास किया पर बच्चा स्तन छोड़ा नहीं, तो सोचा कि मैं यहाँ से भागती हूँ, तो भागने लगी, घर से भागने लगी, और घर के दरवाजे में जैसे ही आई फिर से वो हवा में उड़ने लगी। वो सोचा कि मैं उड़ने लगूंगी तो शायद गिर जाएगा, उड़ के बहुत दूर गिर गई। तो गिरे तो गिरे ये कृष्ण ने देखा, अरे ब्रज में इतने सारे ब्रजवासी हैं, वो रोज सुबह खेती कर रहे हैं, इनके खेती में अगर ये गिर जाएगा, भूतना जो है हमारे जैसे 5 फुट या 6 फुट बने, वो लगभग यहाँ से लेके मिला रोड जैसे इसका जितना उसका लंबा शरीर है, 8 माइल कहते हैं, 12 माइल कहते हैं, 12 माइल यहाँ से लेके बहुत चेंबूर तक जितना लंबा शरीर है सर। तो सोचा ये ब्रजवासी जो खेत कर रहे हैं खेती कर रहे हैं इनका खेत नष्ट हो जाएगा। तो कृष्ण वो जानते हैं यहाँ पे कंस का खेत शुरू हो गया, जैसे कंस का खेत शुरू हो गया धड़ाम करके पूतना गिर गई और कंस का पूरा खेत बर्बाद हो गया, और वहाँ पे पूतना जो है उनका प्राण वायु तो पी लिया, वो मर के वहाँ पे पड़े थे, और कृष्ण उनके स्तन पे खेल रहा था, मानो कि वो गार्डन में कोई बच्चा खेल रहा है। तो सारे ब्रजवासी ये उन्हें माँ यशोदा डर गए और नंद महाराज जी आगे आए और देखा कहाँ पे क्या हुआ कृष्ण को, और जैसे ही देखा कि कृष्ण को क्या हुआ देखा कृष्ण वहाँ पे जिंदा है और खेल रहा है, तो माँ यशोदा दौड़ने लगी और बच्चे को अपने स्तन से लगाई, देखा कि कृष्ण के ऊपर उस राक्षसिनी का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा, तो देखा नहीं। कैसे पता लगा, वो स्तनपान जैसे कि कृष्ण माँ यशोदा का दूध पीने लगे तो पता लगा कि ठीक है, अगर बच्चा बीमार है या ठीक है, इसके मन ठीक है ये जानना है, तन और मन ठीक है जानना है, तो बच्चे को स्तनपान कीजिए, अगर वो बच्चा स्तनपान करेगी तो ठीक है, अगर नहीं तो जरूर इसका तन या मन में कुछ रोग है। तो माँ यशोदा बहुत प्रसन्न हो गई, तुरंत बोला कि ये बच्चे के ऊपर असुरों का प्रभाव हो रहा है, तो तुरंत उसे गौमूत्र से नहलाया और गाय के पूंछ से उन्हें पवित्र किया, गोबर से पवित्र पर लेप लगाया, नहलाया, फिर उनके तिलक लगाया शरीर के बारे जगह में, बोला कि केशव उनका रक्षा करे, माधव उनका रक्षा करे, गोविंद उनका रक्षा करे, इस प्रकार से कृष्ण वहाँ पे कृष्ण का माया सदा ने सेवा किया। नंद महाराज की आदि आए तो देखा ये पूतना माता पड़ी है, और ये पूतना के इतना बड़ा शरीर देखा तो क्या करे, तो पूतना का शरीर तो जला तो नहीं सके, तो क्या किया पूतना के शरीर को काट काट के रखे। काटने के बाद इस काटने में लगभग 6 महीने लगे। काटने के बाद उनके शरीर को जब जलाया तो बहुत सुंदर सुगंध आया। तो प्रश्न उठता है पूतना तो राक्षसी है, उसके शरीर को जलाने से सुगंध कैसा है। जैसे वो सुगंध इतना आया मथुरा तक सुगंध आने लगा। अग्रु यानी कि अगरबत्ती का सूत्र है, कहते हैं कि कृष्ण को जैसे ही कृष्ण ने जैसे ही स्पर्श किया पूतना वासुरिणी शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। इससे ये तात्पर्य निकलता है कृष्ण से जैसे ही हम संबंध जोड़ लेते हैं तुरंत हम पवित्र हो जाते हैं। और इस कलयुग में कृष्ण से संबंध जोड़ने का आसान तरीका क्या है, कृष्ण का नाम उच्चारण करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे करने से ये जो पूतना है पवित्र हो गई। और ये पूतना को कृष्ण भगवान ने जिसे मारने के लिए आई तो उन्हें गोलोक वृंदावन में एक माता का उपाधि दिया। ये सुनकर नंद सुखदेव गोस्वामी महाराज बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। तो कहते हैं कि अगर कृष्ण को मारने वाला को इतना बड़ा उपाधि मिलेगा तो कृष्ण का सेवा करने के वाले को क्या उपाधि मिलेगा। अगर सोच लो अगर ऐसा एक व्यक्ति है जिसके पास हम अगर जाएंगे उसे हम जोर से चाटा मारेंगे तो व्यक्ति बहुत खुश हो जाएगा, बोलेगा आपको मैं आप 1 करोड़ रुपया दूंगा। अगर उसी व्यक्ति को जिसको चाटा मारने से 1 करोड़ मिलता है तो उस व्यक्ति का चरण दबाने से उनको तोहफा देने से हमको वो व्यक्ति क्या नहीं देगा, 10 करोड़ 1000 करोड़ 1,00,000 करोड़ देगा। तो ये विचार करते हुए यहाँ पे कृष्ण ये बताना चाहते हैं अगर कोई मुझे ईर्ष्या करके भी सेवा करने आएगा तो मैं उनको एक उत्तम पति का दर्जा दूंगा। पर आप लोग तो ईर्ष्या नहीं करते हो, अरे जैसे तैसे भी आप मेरे पास आ जाओ और चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं कि मैं लोगों का गलती को नहीं देखता हूँ। देखो उतना राक्षसी है, वो मेरे ईर्ष्या करके मुझे मारने वाली थी, पर मैं उनका उस भाव को नहीं देखा, मैं उनका मार का भाव को देखा, उसे उत्तम व्यक्ति दिया। आप और हम कहेंगे नहीं हम तो नीच है निकृष्ट है, हम तो अनेक जन्मों से पाप किए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आप चिंता मत करो, निरुत्साहित मत हो, आप दुखी मत हो, आप मेरा भक्ति करो, जैसे तैसे भी आप मेरा भक्ति करो, ऐसे करने से आपको मैं एक सुंदर गति दूंगा, आप चिंता मत करो, मेरा भक्त बनो। इस प्रकार से यहाँ पे कृष्ण हमें आस्वादन कहते हैं, मैं आपका पाप को देखूंगा नहीं, आपके बुराइयों को देखूंगा नहीं। कृष्ण कभी हमारे बुराइयों को देखते नहीं है। कौन हमारे बुराइयों को देखते हैं, माया देखते हैं। आप बुरे हो कृष्ण के पास नहीं जा सकते, पर कृष्ण कभी नेवर सीज़ द कृष्ण ऑलवेज सीज़ द ब्राइट साइड ऑफ अ डिवोटी। कृष्ण हमारे गुणों को देखते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कृष्ण भगवत गीता में सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महातो भया। अब छोटा सा मेरा एक सेवा करने आओ तो सेवा को मैं स्वीकार करूंगा, आपके अंदर मैं आपने इतने जन्मों से पाप किया वो मैं कभी नहीं देखूंगा। मैं याद रखूंगा कि आप राधा मदन मोहन मंदिर में आए और प्रणाम किए, याद रखूंगा कि आपने 5 पैसे मुझे दिए, मैं कभी नहीं भूलूंगा। स्वल्पम अपि आप इतना सारा मांस मच्छी खाए सेंट बेल्ट मार के सेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गौमूत्र इत्यादि हम लोग डालते हैं पवित्र करने के लिए। आज लोग अपने शरीर को अपवित्र कर रहे हैं सेंट डाल रहे हैं। सेंट क्या है, वो एक प्रकार अल्कोहल माना जाए, अल्कोहल क्या शराब है, शराब डाल के तो अपवित्र कर रहे। तो कहते हैं कि मैं आपका पाप को नहीं देखूंगा, मैं आपका पाप नहीं देखूंगा, मैं आप आइए मेरे पास, कुछ भी हो आप मेरे पास आइए, मेरे घर में बनिए तो मेरा सेवा कीजिए और मैं आपको एक उत्तम कोटि का गति दूंगा। मेरा भक्ति करने में कोई नुकसान नहीं, केवल लाभ 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 और लाभ है। ये पहला लीला है भगवान कृष्ण का और इससे वो बता रहे हैं हमारे हम सबको आकर्षित करें। अगर कथा सुनने वाला सुनेगा, अगर कोई उन्हें मारने वाला उनको ये गति देता है तो आगे देखते हैं भगवान कृष्ण तो और जो लोग मार रहे हैं उनको क्या क्या देने वाले। जैसे हम लोग कुछ प्रोग्राम देखते हैं, कौन बनेगा अरबपति या करोड़पति, अरे इसने तो ऐसा बोला था इसको करोड़ रुपया मिला, चलो देखते हैं दूसरे को क्या क्या मिलता है। तो इसी प्रकार से जो कथा सुनते हैं भगवान कृष्ण का, वो सोचते हैं अरे पूतना ने ऐसा किया तो उसको माता का गति मिला है, तो चलो हम देखते हैं और जो जो असुर को मार रहे हैं उनको क्या क्या गति मिल रहा है, और जो उनका सेवा कर रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो पूतना का कथा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इस कथा को श्रवण करेंगे गोविंद लगते परम रतिम जो है हमारा गोविंद के प्रति होगा, आसक्ति गोविंद के प्रति होगा, और इस प्रकार का आसक्ति जब होगा तो असली कृष्ण जन्माष्टमी हम मनाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का दो तरीका है, जैसे हम देखते हैं पंडाल इत्यादि बन रहा है, ये बहिरंगा तैयारी है, ये भी जरूरी है, पर कृष्ण का लीला श्रवण करना चाहिए। अद्भुतम भगवान कृष्ण का, कृष्ण अद्भुतम अद्भुतम, कृष्ण के बाल लीलाओं के अद्भुत बाल लीलाओं को श्रवण करना चाहिए श्रद्धा के साथ, तब कृष्ण के प्रति रति जागृत होगा और कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा, तब कृष्ण का जन्म हमारे हृदय में होगा, तब असली कृष्ण जन्माष्टमी होगा। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की भक्ति रस उत्सव की गौर प्रेमानंद, आप लोग बैठे रहिए, कोई प्रश्न किसी का एक आध ले लेंगे, एक आध प्रश्न किसी का होगा तो लेंगे।